आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में एक प्रेस वार्ता कर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को पूरी तरह सफल बताया है। SIR पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि रिविजन पूरी तरह न्याय संगत है और इसे चुनाव से पहले करना लाजमी है।
जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का ये कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं।
SIR प्रक्रिया के बाद तैयार की गई फाइनल लिस्ट के अनुसार बिहार में कुल 7,42,00,000 मतदाता हैं। SIR शुरू किए जाने से पहले बिहार में मतदाताओं की संख्या 7,89,00,000 थी, जो SIR की पहली ड्राफ्ट लिस्ट में घटकर 7,24,00,000 रह गई थी। कुल 69,29,000 लोगों के नाम कटे हैं, जबकि 21,33,000 नए नाम शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार काटे गए नामों में 22,34,000 मतदाता मृत पाए गए, 6,85,000 का नाम दो जगह पाया गया, जबकि 36,44,000 लोग दूसरी जगह जा चुके हैं। चुनाव आयोग की इस प्रेस वार्ता के बावजूद विपक्षी राजनीतिक दलों में वोट चोरी को लेकर भारी संशय बना हुआ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर बिहार में 23,00,000 महिलाओं, खासकर दलित और मुस्लिम महिलाओं के वोट काटने का आरोप लगाया है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने क्या कहा।
इसमें अभी पता लगता है, जो 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने सूची जारी की, पता लगता है कि बिहार की 23,00,000 महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया, उनका वोट काट दिया गया है। 6 जिलों में 59 सीटों पर ये वोट काटा गया है। सारण सीट पर 1,00,000 जो है 24,000 वोट काटे गए। बेगूसराय में एक ही विधानसभा में महिलाओं के 1,15,000 वोट काटे गए। समस्तीपुर में एक ही विधानसभा में 2,18,000 महिलाओं के वोट काटे गए। भोजपुर एक ही विधानसभा में 1,40,000 महिला मतदाताओं के वोट काटे गए। पूर्णिया में 1,90,000 एक ही विधानसभा में महिला मतदाताओं के वोट काटे गए। पुरुषों के 15,00,000 अगर काटे हैं तो महिलाओं के 23,00,000 वोट काट दिए गए। और हमने जब पता किया है तो वहां पर अधिकतर जो दलित और मुस्लिम महिलाएं हैं, ये उनके वोट काट के उन्हें वोट से वंचित कर दिया गया है। जीत हार एक एक वोट से होती है और भाजपा ने एक बड़ा तबके का वोट काट का जो है एक साजिश की है। इस साजिश में चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने उनका साथ दिया है।
बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय में बिहार SIR पर अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है, जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़ों पर विपक्षी दलों और नागरिक सुरक्षा अधिकार संगठनों द्वारा सवाल उठाया जाना तय है। जोधपुर जेल में बंद विश्व प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों से शांति और एकता बनाए रखने और अहिंसा के गांधीवादी तरीके से संविधान की 6 अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और सुरक्षा उपायों के लिए चल रहे संघर्ष को जारी रखने की अपील की है। श्री वांगचुक ने यह संदेश लेह एपेक्स बॉडी के कानूनी सलाहकार हाजी मुस्तफा के माध्यम से दिया। उन्होंने श्री वांगचुक से शनिवार को जेल में मुलाकात की थी। श्री वांगचुक का कहना है कि जब तक 24 सितंबर की हिंसा में 4 लोगों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच नहीं हो जाती, वे जेल में रहने को तैयार हैं। उन्हें 26 सितंबर को लेह में कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों ने श्री वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय आज श्री वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता की NSA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी है और तत्काल रिहाई की मांग की है। रूस द्वारा पाकिस्तान को चीन निर्मित JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए अत्याधुनिक RD-93 MA इंजन दिए जाने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर मोदी सरकार की विदेश नीति को विफल बताते हुए लिखा कि मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि रूस ने भारत की अपील को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को RD-93 MA इंजन देने का फैसला क्यों किया। श्री रमेश ने आगे लिखा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी की नाकामी है, जिसमें राष्ट्रीय हितों की बजाय अपनी इमेज बनाने और ग्लोबल शो को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को यह भी बताना चाहिए कि हमारा पुराना भरोसेमंद अब पाकिस्तान का मददगार क्यों बन रहा है। श्री रमेश ने कहा कि यह सौदा जून में विदेश मंत्री S. जयशंकर के दखल के बाद भी नहीं रुका था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने रूसी सूत्रों के माध्यम से इस खबर को गलत बताया है, लेकिन रूस या भारतीय विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस के खुलासे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में हुई 1 से 5 वर्ष के 11 बच्चों की आकस्मिक मृत्यु के लिए दूषित कफ सिरप को दोषी माना जा रहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कफ सिरप में एक जहरीले रसायन की खतरनाक मात्रा पाए जाने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय का कहना है कि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में श्रीसन फार्मा द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप के नमूनों की राज्य के अधिकारियों द्वारा जांच करने पर खुलासा हुआ है कि कफ सिरप में 48.6% डाइथलीन ग्लाइकॉल की मिलावट है, जो बेहद घातक है। बच्चों की मृत्यु की वजह किडनी फेल होना बताई जा रही है। तमिलनाडु और केरल में भी इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण में खामियों के पहचान और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए 6 राज्यों में 19 दवा निर्माताओं का निरीक्षण शुरू किया गया है। राजस्थान में भी एक अन्य कफ सिरप 3 बच्चों की मौत होने से संदेह के घेरे में है। शुरुआती जांच में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप का नाम सामने आया है। राजस्थान सरकार ने फौरी तौर पर इस दवा की निर्माता कंपनी के सन्स फार्मा की सभी 19 दवाइयों पर रोक लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर कहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में भारत में निर्मित कफ सिरप वैश्विक जांच के दायरे में आ गए हैं और दुनिया भर में इनके सेवन से होने वाली मौतों की खबरें आ रही हैं, जिनमें 2022 में गैम्बिया में 70 से अधिक बच्चों की मौत भी शामिल है। और अब समाचार खेल जगत से। एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम द्वारा पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद भारत ने रविवार को विमेंस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को 88 रन से हरा एक तरफा जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम 50 ओवर में 247 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष ने 35, जमीमा रॉड्रिग्स ने 32 और प्रतीका रावल ने 31 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली। पाकिस्तान की ओर से डायना बेग ने 10 ओवर में 69 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि फातिमा सना और सादिया इकबाल ने 2-2 विकेट लिए। पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। उसके पहले 3 विकेट मात्र 20 रन पर गिर गए। सिदरा अमीन और नतालिया परवेज ने संभलकर खेलते हुए 27 ओवर में स्कोर 95 रन तक पहुंचाया, मगर परवेज के 33 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हो जाने के बाद पाकिस्तानी टीम ने हथियार डाल दिए और पूरी टीम 43 ओवर में 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सिदरा अमीन ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। भारत की ओर से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट झटके। स्नेह राणा को 2 विकेट मिले। भारतीय टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। उन्होंने 20 रन देकर सदफ शम्स, आलिया रियाज और नतालिया परवेज को आउट किया। वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों की यह 12वीं भिड़ंत थी, जिसके सभी मुकाबले भारत ने जीते हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।